भाइयों एवं बच्चों, आज 18 जुलाई 2020 का दिवस आप सबके लिए मंगलमय हो। और मैं आपको श्री महाराज जी का एक प्रसंग सुनाती हूँ। मैं आपको सन 1972 की ओर ले जाती हूँ, जबकि मैं सर्विस में थी। भाई पेटीएम में भाई पत्ता देकर मंदिर में गई थी। उसे संबंधित कुछ और प्रसंग भी ऐसे हैं जो श्री महाराज जी से ही संबंधित है, समय समय पर उनको आपको सुनाया करेंगे। मैं एक प्रसंग जो है वो सुनाऊंगी। यहाँ मैं रहती हूँ विवेक सूद के घर में, तो ये विवेक सूद जी का अपना लिखा हुआ प्रसंग है। विवेक जी लिखते हैं, मेरे पिता जी श्री शादीलाल सूद और माता जनक गुलारी जी दोनों श्री श्री महाराज जी के अंतरंग भक्त थे। श्री श्री महाराज जी हमारे घर पर आया करते थे और पिताजी भी प्राय मंदिर जाया करते थे। मेरा जन्म ननिहाल में हुआ, मेरी भक्ति में नानी ये मंदिर जाया करती थी। उन्होंने बताया था मुझे, विवेक तेरा जन्म हमारे धर्म पर ही हुआ है, तू उल्टा जन्मा था। जब तू रोया नहीं तो मैंने श्री श्री महाराज जी और वैष्णो देवी माँ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे स्वामी जी, हे वैष्णो माता, ये बालक रोना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो मैं सबसे पहले बालक को आपके पास मंदिर में लाऊंगी। मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई और तू रो पड़ा और मेरी चिंता दूर हुई और मैं अपने वचनानुसार तुझे लेकर तेरे माता पिता को लेकर 40 दिन का जब तू था तो श्री महाराज जी के पास वैष्णो देवी गई। जब हम पहुंचे तो श्री महाराज जी अपनी कुटिया में विराजमान थे, भक्तों का ताता आंता लगा हुआ था। स्नेह पाकर हम भी भीतर गए। तू जन्म से हिष्ट पुष्ट था, तेरी मम्मी ने तुझे अपनी गोद में लिटाया था कि अचानक तूने अपने दोनों हाथ श्री महाराज की ओर फैला दिए। श्री महाराज ने शीघ्र ही तुझे अपनी गोद में ले लिया और कहा, बाबा इसका नाम विवेक रखेगा, इसका नाम विवेक है। वो कहा, ये बालक बाबा का इंचार्ज बनेगा। इस प्रकार श्री महाराज जी ने जब कहा तो मैं बहुत हैरान हो गई। अच्छा, श्री महाराज जी कितनी कृपा है। उसमें तेरी मासी गीता माँ भी पास ही खड़ी थी और तेरे मामा रामलाल जी भी खड़े थे। श्री महाराज जी की ये गानी सुनकर हम सब चकित भी हुए और हम सब की श्रद्धा भी महाराज जी के प्रति बहुत ही बढ़ गई। अब विवेक सूद आगे लिखते हैं, जब मैंने होश संभाली तो मैंने देखा श्री माँ गेरुआ वस्त्र गेरुआ साड़ी पहने हुए मंदिर में दिन रात कार्यरत रहती थी। श्री माँ ने बाल गोपाल अध्यात्म शिक्षा केंद्र खोला था। मैं भी शहर के अन्य बालक बालिकाओं के साथ रविवार को मंदिर जाया करता था। श्री माँ हमें अधिकतर नैतिक शिक्षा दिया करती थी। सभी बालक बालिकाएं श्री माँ से बहुत प्रेम करते थे। मैं सोचता था, ये मेरी मासी है या आसमान से आई हुई कोई देवी है। कुल मिलाकर श्री माँ जी का सौम्य स्वभाव और गेरुए वस्त्र में लिपटी हुई ब्रह्मचारिणी को एक तक निहारना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी और माताजी घर पर श्री श्री महाराज जी के बहुत से उपदेश भी सुनाया करते थे। पिता श्री महाराज जी की हर सेवा के लिए सदा तत्पर रहते थे। उन्हें बहुत बार श्री महाराज जी के साथ हरिद्वार धाम तथा जयपुर में मूर्ति लाने का अवसर प्राप्त हुआ था। एक बार मेरा बड़ा भाई लकी, जिसका नाम भी श्री महाराज जी ने ही नरेंद्र रखा था, बहुत बीमार हुआ। उसमें उसकी उम्र 13 वर्ष थी। कुल्लू में 3 महीने अस्पताल में रहे। फिर हम उसे मेरे पिताजी उसे मनाली अस्पताल में ले गए। मनाली में मिशन हॉस्पिटल ने उसे लुधियाना CMC में ले जाने को कहा और सलाह भी दी कि वहाँ पहुँचने तक उसे पानी की बूंद मत देना। मनाली से लुधियाना जाते हुए मेरे पिताजी ने नरेंद्र को मंदिर में लाया। वहाँ मंदिर के सामने गाड़ी खड़ी की और श्री महाराज जी को कहा कि महाराज जी, लकी इतना बीमार है कि अब हमें मनाली से लुधियाना जाना है और उसे पानी भी देने को इनकार किया है। आप कृपया आशीर्वाद दीजिए कि वो ठीक हो जाए। ये सुनकर श्री महाराज जी सीढ़ियां उतर कर सड़क पर आए और जहाँ लकी गाड़ी में था वहाँ पर आकर के लकी के सिर पे हाथ रखा और कहा, लो इसे ये चरणामृत पिला दो। तो मेरे पिताजी ने कहा, वैसे तो डॉक्टर ने कहा है कि लुधियाना पहुंचने तक इसको पानी की एक बूंद भी मत देना, क्योंकि लकी की अंतरियों में कुछ बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका था। लेकिन जब श्री महाराज जी ने चरणामृत पिलाने को कहा तो हम बहुत डर गए। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो श्री महाराज जी का दिया हुआ अमृत है और लकी को 2-4 बूंदे वो चरणामृत पिला दिया गया। फिर हम लुधियाना पहुंचे। लुधियाना में नरेंद्र का इलाज शुरू हो गया और लगभग 2-3 महीने में ही उसका इलाज हो गया और हमें विश्वास जो था महाराज जी पर, वो विश्वास भी हमारा फलीभूत हो गया और हम वापस कुल्लू आ गए। इस प्रकार एक नहीं अनेकों प्रसंग मेरे माता पिता जी के जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में और मेरे जीवन में स्वामी जी के बारे में ऐसे ऐसे प्रसंग हैं जिनको लिखना, सुनना, सुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। श्री माता जी का अद्भुत कर्मठ जीवन और दोनों भाइयों विवेक और कुमार जी का सन्यासी जीवन मेरे हृदय में एक अमिट छाप छोड़ देता है। समय आया जब मुझे भी मंदिर में अधिक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री श्री महाराज जी ने 13 दिसंबर 1987 को समाधि ले ली। उसमें मेरी आयु केवल 14 वर्ष की थी। कमेटी के आगे एक प्रश्न था, मेरे पिता शादीलाल जी प्राय सुनाया करते थे कि कमेटी के आगे एक प्रश्न पैदा हुआ कि शिवमा को प्रैक्टिस में अवश्य साथ देना चाहिए, कमाल और विवेक अभी नादान हैं। इसलिए कमेटी ने विचार विमर्श करके कहा, प्रतिदिन कमेटी का एक सदस्य अपनी धर्म पत्नी सहित श्री माँ के पास सोने जाएगा। वर्ष भर कमेटी के सात सदस्य जिसमें श्री मां जी के अपने भाई भी शिवलाल सूद, रामलाल सूद, विजय सूद और लाला साधुराम खेरा जी तथा मेरे पिताजी का नाम शामिल था। ये सात सदस्य बारी बारी अपनी ड्यूटी करके चले जाते थे। इस प्रकार वर्ष पूरा हो गया। उन दिनों मंदिर में कोई गेट नहीं था और न ही कोई चौकीदार था। माता जी बिल्कुल अकेली कुटिया में सोती थी। स्टाफ के सदस्य भी एक दो ही थे। माल भाई जी और बड़े भाई जी भी दोनों अपने अपने कुटिया में सो जाते थे। मेरे पिताजी को कि माँ जी अब बिल्कुल ही अकेली है। माता जी के जीवन से उनके देवत्व भाव से बड़े प्रभावित थे। वह श्री माँ को साक्षात देवी मानते थे, जैसा कि स्वामी जी ने उनको बताया था। तो उन्हें लगता था एक जंगल में रात के समय श्री मां जी के पास अवश्य कोई बालक सोना चाहिए। उन्होंने मेरी माता जी को कहा, मैडम श्री मां को अकेला नहीं छोड़ना होगा, हमें नरेंद्र या विवेक को बारी बारी प्रतिदिन मंदिर सोने के लिए भेजना चाहिए। मेरी माँ वैसे तो बहुत ही भोली और भक्त थी और अपनी बड़ी बहन माता जी के प्रति बड़ी समर्पित भी थी, फिर भी अपने दोनों बालकों को बारी बारी रात के 9 बजे और अंधेरे में अकेले मंदिर भेजना उन्हें बहुत ही कुछ डरावना सा लगा, क्योंकि उन दिनों रामशिला से लेकर मंदिर तक कोई आबादी नहीं थी और हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी जो हम गाड़ी में बैठकर जाते। मेरा बड़ा भाई एक दिन जाता और दूसरे दिन मैं सोने के लिए चला जाता। स्कूल से आकर मैं बस्ता रखता, खाना खाता, फिर थोड़ा सा होमवर्क करता और रात को 8:30 बजे अपना बैग उठा करके चल पड़ता। कभी कभी भारी वर्षा होती और पहाड़ से पत्थर गिरते, व्यास नदी में बाढ़ आई हुई होती, लेकिन मेरे पिताजी का आदेश था, कुछ भी हो चाहे होम टास्क करके जाओ, रात्रि भोजन करके जाओ, लेकिन अवश्य मंदिर में पहुंचना चाहिए। इसलिए हम दोनों भाई बारी बारी चाहे अंधेरी रात हो चाहे तूफान हो हम अवश्य मंदिर जाते और श्री मां जी भी उस समय तक हमें हमारी राह देखती, हमारी वेट करती कि कब वो आएंगे। जब हम पहुंचते तो माता जी बहुत ही प्रसन्न हो जाती। कभी कभी मेरी माँ जनक दुलारी जी कहती, बेटा आज बड़ी भयानक बारिश है, आज मत जाओ। पर मेरे पिताजी कहते, नहीं मैडम, इन्हें जरूर जाना है, जरूर जाना है। और हम भी उनकी आज्ञा का पालन करते और अवश्य मंदिर में पहुंच जाते। मैं श्री मां जी के पास भूमि पर ही सोता था। एक दिन अर्ध रात्रि भारी शोरागुल हुआ, सुनकर श्री मां जी ने मुझे जगाया। मेरी बचपन की नींद थी, स्कूल से थका मांदा आता था, फिर थका मांदा मंदिर पहुंचता था और मैं 10 बजे ऐसे सोता मानो कोई घोड़े बेचकर सोया हो। तो बड़ी मुश्किल से मां जी ने मुझे कई बार जगाया और फिर मैं उठा तो बैठ गया। तो माता जी ने कहा, जाओ जाओ देखो सड़क पर क्या हो रहा है, कुमार जी की मुझे आवाज सुनाई दे रही है, शायद कुमार जी पर कोई आफत आई है। सुन कि उन दिनों विवेक जी दक्षिण भारत की यात्रा पर चले गए थे और वहाँ पर कोई दूसरा बड़ा व्यक्ति था भी नहीं, इसलिए मैं शीघ्र अतिशीघ्र आंखें मलता हुआ बिस्तरा छोड़ करके माता जी की आज्ञा का पालन करता हुआ सड़क पर जा पहुँचा तो देखा भंडारे का स्टाफ बाकमाल जी बड़ी बड़ी लाठियां लिए सड़क से शहर की ओर दौड़ रहे हैं। मैं भी बड़ी तेजी से दौड़ा। उसमें रात्रि में 2 बजे का समय था। मैंने देखा एक व्यक्ति नग्न अवस्था में पशु की भांति सड़क पर दौड़ रहा था और हम सब उसके पीछे दौड़ रहे थे। देखते देखते वह पहाड़ की ओर चला गया और पहाड़ से जाते जाते वो जंगल में कहीं छुप गया। हमने काफी तलाश किया पर हमें उसका कुछ पता नहीं चला वो कौन था कहां से आया था। अब हम वापस आ गए मंदिर तो देखा कि संत भवन में सब संत जो सोए हुए थे वो जाग गए हैं और उठकर डरे डरे से बैठे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या बात है क्या हुआ था तो एक संत ने बताया कि जब हम सब गहन निंद्रा में सोए हुए थे तो मैं जागा हुआ था। अचानक द्वार की ओर से आवाज आई तो मैंने टॉर्च चलाकर देखा कि एक नग्न व्यक्ति पशु की भांति तेजी से आगे बढ़ा और मेरा गला दबोच लिया। उसने मुझे काटा और मेरा खून पीने लगा। उस 6 फुट ऊंचे साधु ने कहा, तब मैं जोर जोर से चिल्लाया और आहट पाकर बाहर निकला। उस संत ने मुझे अपना शरीर भी दिखाया था, उसे कई अंगों पर काटा था। वह दृश्य कभी मुझे भुलाया भी नहीं भूलता है। स्वामी विवेक जी की समाधि में भी मैंने स्वामी जी की लीला को देखा है। उस समय मैं बड़ा हो गया था, मैंने कारोबार भी शुरू कर दिया था, मेरी शादी भी हो गई थी और मैं आज मंदिर में यथापूर्व जाता ही रहता हूँ। लेकिन मेरा यह सोने का कार्यक्रम रात सोने का कार्यक्रम 1993 में जब श्री मोतीलाल ओगरा जी अपने धर्मपत्नी सहित सल्ला ओगरा जी के साथ मंदिर निवास करने के लिए आए तो आंटी सल्ला जी ने कहा, बेटा बड़े प्यार से मेरे सिर पे हाथ रखा कि बेटा तू पढ़ने वाला है इसलिए तू अब मत आना रात सोने के लिए, अपने भाई को भी इनकार कर देना। अब आप फिक्र मत करो, मैं माता जी का पूरा पूरा साथ दूंगी और रात्रि को माता जी के पास ही सोऊंगी। तो आंटी का ये प्यार भरा वचन सुनकर मैंने आकर के अपने माता जी को और अपने पिताजी को बताया कि अब मुझे मंदिर नहीं जाना है। इस प्रकार आंटी ने ये जिम्मेदारी ले ली है। तो ये तो उसमें था 93 का। लेकिन अब मैं जो आपको बात सुना रहा हूँ वो विवेक जी की समाधि का 2002 का दृश्य है। फिर क्या हुआ कि जब जब मंदिर पर आज भी खतरा आता है तो कमाल भाई जी मुझे बुला लेते हैं। एक दिन कमाल भाई जी ने कहा, चलो विवेक गाड़ी ले चलो और मुझे जल्दी जाना है। मैंने अपनी दुकान को जो मैंने अभी नई ही माल डाला था अपनी पत्नी को कहा कि आप बैठो मैं अभी 2 घंटे में वापस आता हूँ। मैं गाड़ी लेकर कमाल जी को लेकर जल्दी पहुंचा। जैसे ही हमने चढ़ाई चढ़ी और बगीचे में पहुंचे तो मैं तो दंग ही रह गया कि वहां का क्या अधिक आतंकवादी वातावरण था। बहुत से लोग छुरियां चाकू डंडे आदि लेकर खड़े थे और एकदम कुमार जी पर टूट पड़े और कहने लगे मुझे कि आप क्यों आए हैं, आप चले जाओ नहीं तो हम आपको भी इस बाबा के साथ खत्म कर देंगे। मैंने काफी कोशिश की कुमार जी को बचाने की और जब फिर उन्होंने कुमार जी का फोन भी छीन लिया तो मैंने अपने फोन से माता जी को फोन किया कि यहाँ बड़ा हंगामा हो गया है और भाई जी को ये लोग बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं। और जब मैं भी आगे जाता हूँ तो मुझे भी कहते हैं मत आओ, पर मैं भाई जी को अकेला कैसे छोड़ूं। तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप कुमार को मत छोड़ो, अकेला मत आना, आपने इसे छोड़ कर आप यहीं रहो, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। तो मैं भाई जी के साथ ही बना रहा। फिर माता जी ने कैसे कैसे करके ना जाने फिर वहाँ पुलिस आई और भाई जी को मुझे नीचे जरी ले आई। भाई जी को उन्होंने अपनी कस्टडी में रखा और मैं गाड़ी लेकर बाहर खड़ा रहा। मैंने फिर 6 बज चुके थे, रात हो रही थी और कहा माता जी क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, आऊँ क्या करूँ। तो माता जी ने कहा नहीं बेटा, कमाल को अकेला छोड़ के मत आओ, आप यहीं बैठो, देखो स्वामी जी क्या करते हैं। तो इधर से विपुल खेरा जी और मनोज जी ने SP से मिलकर बात बना ली थी और उसमें जो थानेदार थे शायद तो वो मनोज के साथ पड़े थे। तो मनोज जी ने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा मैं मणिकर्ण में हूँ, अभी रात को 8 बजे चलूंगा, तो आप विवेक को बोलो कि जब मेरी गाड़ी आएगी तो मेरी गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लगा देना। तो मैं भी पुलिस चौकी पर खड़ा रहा। सड़क के दोनों ओर गाँव के निवासी पत्थर लेकर खड़े थे कि कब ये लोग निकले तो हम इनको मार दें। इतने में गाड़ी आ गई, जब पुलिस की गाड़ी आई तो मैंने भी उनके पीछे गाड़ी लगा दी और उनके निरीक्षण में मैं कुमार जी को लेकर मंदिर पहुंचा। रात्रि के 12 बज चुके थे। श्री माता जी और आंटी अमिता जी मनोज जी की धर्मपत्नी तथा विमला बहन कमरे में बैठ कर के बड़े दुखी दुखी बातचीत कर रहे थे। मैंने भाई को छोड़ा और घर आया तो मेरी माँ ने पूछा क्या कहाँ गया था दुकान छोड़कर। तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही कोई काम था, मैंने उनको जगह भी कुछ भी नहीं इस विषय में बताया। इस प्रकार न जाने क्यों स्वामी जी का मेरे पर आशीर्वाद है कि मुझे समय समय पर बिजली जब कटी तो भी मुझे 5 दिसंबर 2016 को मंदिर की बिजली काट दी गई थी। अधिक ठंड होने से सड़क निर्माण कार्य होने से श्री माँ का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, वो सिंगापुर चली गई थी। लेकिन जब वह आई तो मंदिर की बिजली कट गई थी और मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे घर पे आ जाओ और ये मेरा सौभाग्य होगा। तो माँ जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मेरे पास आ गई। ये जब भी मंदिर पर कोई बात आती है या मंदिर का कोई कार्य करना होता है तो श्री महाराज जी मुझे साहस देते हैं, प्रेरणा देते हैं और मैं उनके श्री चरणों में पहुंच जाता हूँ। उन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ जय प्रभु।